आशा की किरण लेकर आई हूँ मैं किरण आचार्य। ये पॉडकास्ट जहाँ पर होगी ढेर सारी बातें जो हमेशा महकती रहेंगी खुशियों से, आशाओं से, उम्मीदों से, आकांक्षाओं से और उत्साह से। यानी कि ये है आपके जीवन में एक नया सूर्योदय। तो फिर हमेशा मिलते रहिए आशा की किरण में हमसे। जय श्री कृष्णा साथियों, आप सभी को आशा की किरण में श्रीमद् भगवद गीता के पठन का आनंद आ रहा है। हमको पठन का आनंद आ रहा है, आपको श्रवण का आनंद आ रहा है। और ये बात हमें पता चली है आपके भेजे हुए ध्वनि संदेशों से। बहुत प्रकार के अलग अलग जगह से हर आयु और वर्ग के लोगों ने हमको ये मैसेजेस भेजे हैं। पिछले दिनों आपने देखा ही था कि एक युवा कवि ने बहुत सुरीला गीत हमें गा करके भेजा था। साथ ही एक गृह प्रबंधक का जो है उन्होंने हमारे को सुंदर गीत भजन गा के भेजा था, उसको हमने शामिल किया था। और आज जो हम शामिल करने जा रहे हैं वो है एक अलग तरह की अभिव्यक्ति। आप हैं पंडित विष्णु दाधीच टोलडीवाल और आपने ये मैसेज हमें भेजा है अपने ही अंदाज में। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय से समय निकाला, निकालते भी हैं, हमारा कार्यक्रम भी सुनते हैं। साथ ही आपका संदेश जो हमने सुना, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोरोना के इस नकारात्मक काल में हम सकारात्मक रहें, निराशा को आशा से पछाड़ दें ताकि भविष्य में हमारे पास ये जो कठिन काल है कोरोना का, उसकी मधुर स्मृतियाँ बनी रहे कि हमने उस कठिन काल में भी इतने सकारात्मक कार्य करके उसको भी अविस्मरणीय बना दिया। तो इसी आशा के साथ सबसे पहले तो हम सुनेंगे पंडित विष्णु दाधीच टोलडी वालों का संदेश और तत्पश्चात हम श्रीमद् भगवद गीता का विवेचना का पठन आरंभ करेंगे। विवेचनाकार हैं जय दयाल गोयंद का। आज हम श्लोक संख्या 45 और 46 का पठन करेंगे।
परम सम्मानीय डॉक्टर किरण जी आचार्य को बारंबार साधुवाद कि आपने इस कोरोना वायरस के संकट के समय में पॉडकास्ट के द्वारा गीता पे उपदेश का आपने एक ये रास्ता चुना जिससे कि सभी को गीता के महत्व के बारे में जानकारी मिले। मैं पुनः आपको साधुवाद कहना चाहूँगा। इस विपरीत समय में श्रीमद् भगवत गीता ही एक परम साधना है जो मनुष्य को इस कठिन समय में सहयोग प्रदान करती है। ये गीता एक ऐसा साधन है, ऐसा परम मंत्र है। अवक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अवक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। इसका अर्थार्थ कि अर्जुन संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले भी अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाते हैं। केवल बीच का जो सांसारिक जो क्रम है वहीं पर प्रकट रहते हैं। फिर ऐसी स्थिति में शोक किस बात का करना। इसलिए इस कोरोना वायरस के संकट के समय में बिल्कुल भी हमें चिंताग्रस्त नहीं होना है, ना शोक करना है, और मजबूत रहकर हमें इस संघर्ष में कामयाब होना है। मैं पुनः आशा की किरण को साधुवाद और डॉक्टर किरण आचार्य जी को साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने एक शानदार जो मार्गदर्शन का रास्ता चुना सभी के लिए प्रेरणादायी होगा।
कृष्णाय वासुदेवाय
इस प्रकार भोग और ऐश्वर्य में आसक्त सकाम मनुष्यों में निश्चयात्मिका बुद्धि के न होने की बात कहकर अब कर्म योग का उपदेश देने के उद्देश्य से पहले भगवान अर्जुन को उपर्युक्त भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति से रहित होकर समभाव से संपन्न होने के लिए कहते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुणियों भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य स्तवस्थो निर्योग क्षेम आत्मावान। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों को प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो।
तुझको ही मां एक यही मेरी लगन मेरा जीवन तेरी शरण मेरा जीवन।
त्रिगुण्य विषयाह पद का क्या अर्थ है और वेदों में त्रैगुण्य विषयाह कहने का क्या भाव है? सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के कार्य को त्रैगुण्य कहते हैं। अतः समस्त भोग और ऐश्वर्यमय पदार्थों और उनकी प्राप्ति के उपाय भूत समस्त कर्मों का वाचक यहाँ त्रैगुण्य शब्द है। उन सब का अंग प्रत्यंगों सहित जिनमें वर्णन हो उनको त्रैगुण्य विषयाह कहते हैं। यहाँ वेदों को त्रैगुण्य विषयाह बतलाकर यह भाव दिखलाया है कि वेदों में कर्म कांड का वर्णन अधिक होने के कारण वेद त्रैगुण्य विषय हैं। नेत्रय गुण्य होना क्या है? तीनों गुणों के कार्य रूप इस लोक और परलोक के समस्त भोगों में तथा उनके साधन भूत समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और कामना से सर्वथा रहित हो जाना ही निस्त्रयी गुण होता है। यहाँ स्वरूप से समस्त कामों का त्याग कर देना निस्त्रयी गुण होना नहीं है, क्योंकि स्वरूप से समस्त कर्मों का और समस्त विषयों का त्याग कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। यह शरीर भी तो तीनों गुणों का ही कार्य है जिसका त्याग बनता ही नहीं, इसलिए यही समझना चाहिए कि शरीर में और उसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों में और उनके फल रूप समस्त भोगों में अहंता, ममता, आसक्ति और कामना से रहित होना ही यहाँ निस्त्रय गुण्य अर्थात तीनों गुणों के कार्य से रहित होना है। द्वंद्व किन को कहते हैं और उनसे रहित होना क्या है? सुख, दुख, लाभ, हानि, कीर्ति, अकीर्ति, मान, अपमान और अनुकूल, प्रतिकूल आदि परस्पर विरोधी युग्म पदार्थों का नाम द्वंद्व है, और इन सब के संयोग वियोग में सदा ही सम रहना, इनके द्वारा विचलित या मोहित न किया जाना अर्थात हर्ष, शोक, राग द्वेष आदि से रहित रहना ही इनसे रहित होना है। नित्य सत्व क्या है और उसमें स्थित होना क्या होता है? सच्चिदानंद घन परमात्मा ही नित्य सत्व सत्य वस्तु है, अतएव नित्य अविनाशी सर्वज्ञ परम पुरुष परमेश्वर के स्वरूप का नित्य निरंतर चिंतन करते हुए उनके अटल भाव में स्थित रहना ही नित्य वस्तु में स्थित होना है।
सागर बूंद भर में तुम गगन रज कण हो मैं आराध्य हो तुम भक्त हो गण स्वामी तुम और गण हो मैं।
नित्य सत्वस्थ का अर्थ यदि निरंतर सत्व गुण में स्थित होना मान लिया जाए तो क्या हानि है? ऐसा अर्थ भी बन सकता है इसमें हानि की कोई बात नहीं, किंतु उपर्युक्त अर्थ में और भी अच्छा भाव है, क्योंकि कर्म योग का अंतिम परिणाम समस्त गुणों से अतीत होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेना कहा गया है। योग क्षेम किसको कहते हैं और अर्जुन को निर्योग क्षेम होने के लिए कहने का क्या भाव है? अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति को योग कहते हैं और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। सांसारिक भोगों की कामना का त्याग कर देने के बाद भी शरीर निर्वाह के लिए मनुष्य की योग क्षेम में वासना रहा करती है। अतएव उस वासना का भी सर्वथा त्याग कराने के लिए यहाँ अर्जुन को निर्योग क्षेम होने को कहा गया है। अभिप्राय यह है कि तुम ममता और आसक्ति से सर्वथा रहित हो जाओ, किसी भी वस्तु की प्राप्ति या रक्षा को चाहने वाले मत बनो को कहते हैं और अर्जुन को आत्मवान होने के लिए कहने का क्या भाव है? इंद्रियों के सहित अंतःकरण और शरीर का वाचक यहाँ आत्मा पद है। मन, बुद्धि और इंद्रियां जब तक मनुष्य के वश में नहीं हो जाते, उसके अपने नहीं बन जाते, उसके शत्रु बने रहते, तब तक वह आत्मवान नहीं है। अतएव जिसने अपने मन, बुद्धि और समस्त इंद्रियों को भली भांति वश में कर लिया, उसको आत्मवान यानी आत्मा वाला कहते हैं। जिसके मन, बुद्धि और इंद्रियां वश में किए हुए नहीं हैं, उनको समत्व योग का प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। और जिसके मन, बुद्धि और इंद्रियां वश में हैं, वह साधन करने से सहज में ही समत्व योग को पा सकता है। इसलिए भगवान ने यहाँ अर्जुन को आत्मवान होने के लिए कहा है।
जीवन में सो अब गुण भरे हे विनायक गजा।
आप सुन रहे हैं आशा की किरण और जीवन में नया सूर्योदय लेकर आई हूं मैं किरण आचार्य। श्लोक में अर्जुन को यह बात कही गई कि सब वेद तीनों गुणों के कार्य का प्रतिपादन करने वाले हैं और तुम तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों में और उनके साधनों में आसक्ति रहित हो जाओ। अब उसके फल स्वरूप ब्रह्म ज्ञान का महत्व बतलाते हैं। यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संप्रुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, अर्थात सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रायोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रायोजन रह जाता है। इस श्लोक में जलाशय के दृष्टांत से क्या बात कही गई है? इस श्लोक में जलाशय का दृष्टांत देकर भगवान ने ज्ञानी महात्माओं की आत्यंतिक तृप्ति का वर्णन किया है। अभिप्राय यह है कि जिस मनुष्य को अमृत के समान स्वादु और गुणकारी अथाह जल से भरा हुआ जलाशय मिल जाता है, उसको जैसे जल के लिए वापी, कूप, तड़ाग आदि छोटे छोटे जलाशयों से कोई प्रायोजन नहीं रहता, उसकी जल विषयक सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं, वैसे ही जो पुरुष समस्त भोगों में ममता आसक्ति का त्याग करके सच्चिदानंद घन परमात्मा को जान लेता है, जिसको परमानंद के समुद्र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसको आनंद की प्राप्ति के लिए वेदोक्त कर्मों के फल रूप भोगों से कुछ भी प्रायोजन नहीं रहता तथा पूर्ण काम और नित्य तृप्त हो जाता है। मनुष्य को वेदोक्त कर्मों के फल रूप भोगों में ममता आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके पूर्णतया निस्त्रेय गुण्य हो जाना चाहिए। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय में मनुष्य को जितने जल का प्रयोजन होता है उतना जल वह ले लेता है। इसी प्रकार ब्रह्म को जानने वाला ज्ञानी पुरुष अपने प्रयोजन के अनुसार वेदों के अंश को ले लेता है। ऐसा अर्थ मानने में क्या आपत्ति है? ऐसा अर्थ भी बन सकता है, इसमें कोई हानि की बात नहीं है, किंतु उपर्युक्त अर्थ का भाव और भी सुंदर है, क्योंकि ब्रह्म को प्राप्त हुए ज्ञानी पुरुष का संसार में कोई भी प्रयोजन नहीं रहता।
गीता संतों का जीवन है, गंगा के सम अति पावन है, शरणागति अमृत भरा
आशा की किरण नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए लेकर के आया है पंचतंत्र की कहानियाँ। तो सुनना न भूलिएगा दोस्तों, किरण दी के साथ पंचतंत्र की कहानियाँ। तो साथियों, कल द्वितीय अध्याय का 47वां श्लोक हम पढ़ेंगे, और ये बड़ा ही खास श्लोक है, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसका हम जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी प्रयोग जरूर करता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस श्लोक की विस्तृत विवेचना करेंगे। साथ ही कर्म योग जो है उसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे। तो कल का एपिसोड बड़ा महत्वपूर्ण है, हम भी बड़े उसके लिए उत्सुक हैं, और आप भी ज़रूर सुनिएगा। ध्वनि संदेश भेजते रहिए, वही हमारी कार्यक्रम की धड़कन है, जान है। तो प्रतीक्षा रहेगी, दीजिए विदा किरणाचार्य को। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। जय श्री कृष्णा।
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती,
पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरिनाम यही हरिधाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से
है। ये है पॉडकास्ट आशा की किरण, जहां पर आपको मिलेगी ढेर सारी खुशियां, उम्मीदें, आशाएं, उमंग, उत्साह, सकारात्मक सोच। तो फिर जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके जीवन में उम्मीदों का एक नया सूर्योदय आशा की किरण के साथ। इसे लेकर आऊंगी मैं किरण।